समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
लीजिए साहब, एक और नया दिन शुरू हो गया है। आप कहाँ जा रहे हैं, दफ्तर या किसी और जरूरी काम से? जरा ध्यान से, भले ही कितनी ही जल्दी में हो पर ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट जंप करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। चालान के डर से नहीं, जिंदगी के डर से, ताकि सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। देखिए, चंद सेकंड की ही तो बात है, लाल बत्ती हरी जरूर होगी और आप हिफाजत से अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो सकेंगे। अब एक नजर इधर भी मारिए, हमारी जिंदगी भी तो ट्रैफिक सिग्नल की ही तरह है। मुश्किलों की रेड लाइट होती है, मगर जरा सा धैर्य, जरा सा इंतजार, जरा सा सब्र दरकार है उस रेड लाइट के ग्रीन लाइट में बदलने को। मुश्किलें खत्म होते ही जिंदगी ग्रीन सिग्नल देती है और हम बढ़ सकते हैं अपनी मंजिल की तरफ। लेकिन अगर मुश्किलों रूपी रेड सिग्नल के समय हमने घबरा कर उसे जंप करने की कोशिश की, तो फिर वक्त ऐसा चालान काटता है जिसकी भरपाई करना कई बार मुश्किल तो कई बार नामुमकिन ही हो जाता है। तो फैसला हमारा है, ट्रैफिक सिग्नल हो या जिंदगी, ये हम पर है कि हम रेड सिग्नल जंप करके मुसीबतों में घिर जाएं या जरा सा इंतजार करके ग्रीन सिग्नल पर आगे बढ़ें। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी हमें ये इशारा दे चुकी है कि आज सवेरे कार्यक्रम के लिए हरी बत्ती यानी ग्रीन लाइट हो गई है। तो बढ़ते हैं अपने आज के सफर पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे की तरफ। आकाशवाणी गोल्ड FM 100.1 MHz पर आपके साथ आज सवेरे में आज हूं मैं नईम अख्तर और साथ है मेरे सुभद्रा रामचंद्रन। सुभद्रा कैसी हैं?
हेलो नईम, वेरी वेल, आई एम डूइंग वेरी वेल। गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू हियर दिस न्यूज मैगजीन प्रोग्राम। इट्स अ मंडे मॉर्निंग एडिशन ऑफ कोर्स, सो स्टे, कीप ऑल योर मंडे ब्लूज असाइड एंड जॉइन अस फॉर दिस ग्रेट सेशन ऑफ आज सवेरे। सो नईम, वी बिगिन विद सम न्यूज हेडलाइंस।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेरिस ओलंपिक्स में सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और हर भारतीय को उन पर गर्व है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वो पेरिस ओलंपिक्स में पूरे भारतीय दल के प्रयासों की सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री ने खेल नायकों को उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। पेरिस ओलंपिक में 16 खेलों में कुल 117 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत एक रजत, एक 5 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा।
The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has refuted the allegations made by Hindenburg Research and emphasized that it has adequate internal mechanisms for addressing issues relating to conflict of interest, which include disclosure framework and provision for recusal. It also noted that relevant disclosures required in terms of holding of securities and their transfers have been made by the chairperson from time to time. It also highlighted that the chairperson has also recused herself in matters involving potential conflict of interest. The SEBI has also asked investors to remain calm and exercise due diligence before reacting to such reports. In a statement, the country's stock market regulator also asked investors to take note of the disclaimer in the report that states that readers should assume that Hindenburg Research may have short positions in the securities covered in the report. Highlighting about the claims made in the Hindenburg Research report, SEBI said that these issues warrant an appropriate response. It further said that the allegations made by Hindenburg Research against the Adani Group have been duly investigated by SEBI. The SEBI also said that it remains committed to ensuring the integrity of India's capital markets and its orderly growth and development.
निर्वाचन आयोग का दल विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए आज से हरियाणा के 2 दिन के दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू और आयोग के अन्य अधिकारी राज्य में कई बैठकें करेंगे। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, जिला चुनाव अधिकारियों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगा। कल निर्वाचन आयोग प्रवर्तन एजेंसियों को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश देगा। इसके अलावा राज्य के मुख्य सचिव, अन्य प्रशासनिक सचिव, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ अन्य संबंधित तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said, the Maldives is a key partner for India in the Indian Ocean region, and the two nations aspire to turn their cooperation into a modern partnership. Dr. Jaishankar was speaking after inaugurating the Addu Reclamation Project and Addu Shore Protection Project in Maldives. The External Affairs Minister said, India has partnered with the government of Maldives on the Addu Reclamation and Shore Protection Project to find a sustainable way to develop Addu as a regional hub. Dr. Jaishankar said this ambitious program of $80 million involves reclamation for tourism development purposes as well as for the overall economic development of Addu.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे. ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 113वीं कड़ी होगी. कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर आमंत्रित हैं. नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं. विचार और सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे. मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा. आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये उपलब्ध रहेगा. आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा.
NEET PG 2024 exam was conducted successfully in 170 cities across the country yesterday. The National Board of Examinations in Medical Sciences, NBEMS, said that this year around 2,28,540 admit cards were issued to candidates. More than 1,950 independent appraisers and 300 flying squad members were deputed at the examination centres to monitor the conduct of NEET PG. It added that 8 regional command centers were also set up to supervise the conduct of the nationwide examination. In order to prevent any misinformation about the examination, NBEMS closely monitored the social media and ensured that only authentic information is given to the stakeholders. The NBEMS said that the heightened security measures, along with close coordination amongst various agencies, has ensured safe and smooth conduct of NEET PG, thereby maintaining the integrity of this examination.
राजस्थान में शनिवार से जारी वर्षा से राज्य के विभिन्न भागों में 20 लोगों की मृत्यु हो गई है. जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा में कल तेज वर्षा से कई स्थानों में पानी भर गया. प्रशासन ने जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर और भरतपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है. मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कुछ जिलों में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया है. इस बीच जयपुर के उफनते कनौटा बांध में 5 युवकों के बह जाने की खबर है. उधर बाणगंगा नदी में 7 किशोरों के डूबने और 2 युवकों के माशी नदी के किनारे मोटरसाइकिल समेत बह जाने से मौत हो गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए जयपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. श्री शर्मा ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य तेज करने और आने वाले दिनों में मौसम के अनुमान को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा है.
रुवांडास प्रेसिडेंट पॉल कगामे वाज स्वोर्न इन फॉर हिज फोर्थ टर्म आफ्टर सिक्योरिंग ओवर 99% ऑफ द वोट. द ओथ ऑफ ऑफिस वाज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस फॉस्टिन टिजिलियायो ड्यूरिंग विच कगामे प्लेज्ड टू अपहोल्ड पीस, नेशनल सॉवरेंटी एंड नेशनल यूनिटी. इन अ पोस्ट ऑन एक्स, प्रेसिडेंट एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड टू द सिटीजन्स फॉर देयर सपोर्ट. हाउएवर, rights activists have criticized the election outcome, arguing that it highlights the lack of democratic processes in the country. Only 2 out of 8 candidates were allowed to run in the presidential race, and those who criticized Kagame were barred from participating. The first ever Global Women's Kabaddi League will commence next month in Haryana. Officially named the Global Pravasi Women's Kabaddi League GPKL, this groundbreaking tournament will feature female athletes from over 15 countries. The event represents a significant advancement in promoting Kabaddi internationally, supporting efforts to include the sport in the Olympic Games and bolstering India's bid to host the 2036 Olympics.
और अब सुभद्रा, प्रमुख महानगरों से जुड़ी कुछ खबरें हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं. पहले आप कौन से शहर के बारे में बात करेंगे?
फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अप चेन्नई.
जी,
In this year's engineering counseling, computer science, AI and IT are the most sought-after choices by the students. Core branches such as civil engineering and mechanical engineering have taken a backseat. Anna University campuses, including Madras Institute of Technology and College of Engineering Guindy campus, remain top choices. Of the 26,000 and odd students, 17,679 students got seat allotments and 8,575 opted out in the first round of counseling. Anay, what do you have next?
जी, मेरे पास दिल्ली से दो खबरें हैं। दिल्ली मेट्रो ने जनता को अपनी सुरक्षा के लिए आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली एलिवेटेड मेट्रो लाइनों के करीब पतंग उड़ाने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि 25,000 वोल्टेज ओवरहेड इक्विपमेंट ओएचई तारों के साथ किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क घातक हो सकता है। स्वतंत्रता दिवस के आसपास पतंग उड़ाने की गति तेज हो जाती है और इससे पतंग की डोर ओएचई तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पेंटोग्राफ में फंसने की संभावना बनी रहती है। ऐसी घटनाएं ओएचई या पेंटोग्राफ को नुकसान पहुंचाकर या ट्रिप करके मेट्रो सेवाओं को बाधित कर सकती हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजधानी के सुनहरी, कुशक और बारापुला नालों से गाद निकालने के चल रहे काम का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन सभी स्थलों पर गाद निकालने का कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है। उच्च तकनीक मशीनों की सहायता से 100 से अधिक कर्मचारी 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। श्री सक्सेना ने बताया कि उन्होंने सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि मॉनसून के बाद भी नालों की सफाई का कार्य जारी रहे ताकि नालों में जल भराव की स्थिति न उत्पन्न हो।
And now taking the listeners to Bengaluru name. Karnataka Deputy Chief Minister and Irrigation Minister D.K. Shivakumar has informed that a high-level technical team will be engaged to fix the crest gate at Tungabhadra Dam in Vijayanagar district. One of the 33 crest gates collapsed on Saturday night due to the chain link breaking down. Speaking to media persons at the Tungabhadra Dam site yesterday, Shivakumar said that all the crest gates of the dam were opened to reduce stress on the dam. He says 60 TMC of water will be released gradually from the dam to install the crest gate. He assured the farmers that after the crest gate is fixed, water will be available for at least one crop. According to the obligations, the state has released 25 TMC of water to the neighboring state and another 90 TMC share remains as balance. What do you have next?
जी, मैं मुंबई की दो खबरें लेकर आई हूं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में पहला 1000 बिस्तरों वाला सामान्य अस्पताल स्थापित करने के लिए सरकारी संकल्प जारी किया गया। महाराष्ट्र में 1000 बिस्तरों और सभी आवश्यक सुविधाओं वाला पहला सामान्य अस्पताल पंढरपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार यह निर्णय लिया गया है और इस संबंध में एक आधिकारिक सरकारी संकल्प GR भी जारी किया गया है। 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल में सामान्य रोगियों के लिए 300 बिस्तर, महिलाओं और बच्चों के लिए 300 बिस्तर, ऑर्थोपेडिक और ट्रॉमा देखभाल के लिए 150 बिस्तर, सर्जरी के लिए 100 बिस्तर, गहन देखभाल के लिए 100 बिस्तर और मनोरोग देखभाल के लिए 50 बिस्तर शामिल होंगे। संकल्प में यह भी कहा गया है कि आवश्यक स्थान के प्रावधान के साथ निर्माण और स्टाफिंग को अलग से संभाला जाएगा। और एक और खबर जो मेरे पास मुंबई से है सुभद्रा, वो हमारे स्वतंत्रता दिवस से कुछ जुड़ी हुई है। पनवेल नगर निगम ने घर घर तिरंगा पहल के अंतर्गत तिरंगे के सम्मान में तिरंगा मैराथन का आयोजन किया है। नगर निगम मुख्यालय से वडाले झील तक चली मैराथन भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी। इस कार्यक्रम में 400 से अधिक छात्रों, नागरिकों, नगर निगम के अधिकारियों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और स्वच्छता कर्मचारियों ने भाग लिया। घर घर तिरंगा पहल के तहत स्वयं सहायता समूह द्वारा 12 से 14 अगस्त तक पनवेल में तिरंगा मेला आयोजित किया जाएगा। 13 अगस्त को ए वतन तेरे लिए शीर्षक से देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम रखा गया है और 14 अगस्त को तिरंगा के सम्मान में बाइक और साइकिल तिरंगा रैली निकाली जाएगी।
And I'm following you, Naeem, with another news concerning our national flag.
Ji.
Union Coal Mines Minister, of course this is coming in from Telangana, Union Coal Mines Minister G. Kishan Reddy has launched a Tiranga rally in Hyderabad. Speaking to the media on the occasion, he announced the commencement of the Independence Day celebrations. He urged people, especially students and voluntary organizations, to protect the country's integrity and national unity while educating the youth about the history of India's independence celebrations. Noting the Prime Minister, call for every household to hoist the national flag under the Har Ghar Tiranga initiative. He noted that around 23 crore people hoisted the national flag at their residence during the 75th anniversary of independence. The festival, including the Tiranga Yatra, will continue till August 15.
Har Ghar Tiranga Abhiyan Tirange ki shaan mein एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को harghartiranga.com पर अपलोड करें।
And friends, back to another news from Hyderabad. Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy led team has inked 19 investment deals and memoranda of understanding of a total investment of about 31,500 crore rupees before concluding its first official visit to the USA. The state government claimed that these deals and MOUs will create over 30,000 new jobs for the state. The team left for South Korea. According to a release, before leaving for South Korea, the chief minister said the delegation pitched Hyderabad and Telangana to business heads and investors across different sectors and closed new expansion deals in IT, life sciences, pharma, data centers, AI, cloud and data centers, electric vehicle and batteries, green energy and manufacturing, among others.
और एक खबर मेरे पास कोलकाता से भी है। संस्कार भारती पश्चिम बंगाल के कीर्तन संगीत को ध्रुपदी या शास्त्रीय संगीत के रूप में मान्यता देने के लिए सरकार से अपील करेगी। संस्कार भारती ने रविवार को अपनी 37वीं वार्षिक बैठक में बताया कि केंद्र सरकार ने कीर्तन को मान्यता नहीं दी है। बैठक में कीर्तन शैली के 70 गायक उपस्थित थे। बंगाल के गौड़ीय नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए केंद्र सरकार के पास ले जाया जाएगा। संस्कार भारती की दक्षिण बंगाल इकाई के महासचिव तिलक सेन गुप्ता ने कहा कि भविष्य में संगठन कीर्तन कलाकारों को लेकर कार्यक्रम आयोजित करेगा। और अब प्रमुख महानगरों की खबरों के बाद प्रमुख महानगरों के मौसम के बारे में भी अपने श्रोताओं को आगाह कर देते हैं। दिल्ली में आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वैसे तो खैर आजकल दिल्ली में जैसी बारिश पड़ रही कई जगह तो बहुत तेज बारिश भी है जी। तापमान की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा कोलकाता में भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगे। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज 26 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 35। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई अगेन विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain again or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees Celsius and a maximum of 32 degrees Celsius.
और अब बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 की, जिसका भव्य समारोह के साथ कल समापन हो गया है। भारत 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
33वें ओलंपिक खेलों का कल पेरिस के स्टेड फ्रांस में एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया और इन खेलों की मशाल अब लॉस एंजलिस को सौंप दी गई, जहां 2028 में अगले ओलंपिक खेल होने हैं। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे पीआर श्रीजेश और मनु भाकर। समारोह में पेरिस ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी इटांगुए ने तहे दिल से सभी एथलीटों और मेहमानों का आभार व्यक्त किया। साथ ही 45,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स, आयोजकों और पेरिस वासियों का भी शुक्रिया अदा किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थॉमस बाक ने इन खेलों को सफल बताया और ओलंपिक ध्वज लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बास को सौंप दिया। समापन समारोह में मशहूर अमरीकी अभिनेता टॉम क्रूज स्टेडियम से मोटरसाइकिल पर ओलंपिक ध्वज लेकर निकले। पेरिस ओलंपिक खेलों में 17 से ज्यादा नए विश्व कीर्तिमान बने। इन खेलों के सबसे सफल एथलीट रहे मेजबान फ्रांस के तैराक लियो मचा, जिन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में अमेरिका की तैराक टोरी हस्के का प्रदर्शन सबसे श्रेष्ठ रहा। टोरी ने 3 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। 1 रजत और 5 कांस्य यानी कुल 6 पदकों के साथ भारत रहा पदक तालिका में 71वें स्थान पर। पेरिस से आकाशवाणी के लिए मैं महेंद्र सिंह लालस।
Naeem, welcome back. Let's welcome the listeners back to our show. Yes, of course. What's going to happen today? Yes, friends, today is World Elephant Day. Yes, very good song you chose. And of course, friends, the objective of this day is to create a sustainable environment where elephants are not exploited, but taken care of. And of course, if we go back to the origin of this day, it was co-founded on August 12, that is this day, in 2012, the Canadian Patricia Sims and Elephant Reintroduction Foundation of Thailand.
जी, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो धरती पे पाया जाने वाला सबसे विशाल प्राणी है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है मतलब हाथी दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है पूरी दुनिया के हाथियों के प्रति जागरूकता और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है. एलिफेंट की इंट्रोडक्शन फाउंडेशन द्वारा 2011 में इसकी पहल की गई थी, लेकिन जैसा कि आपने बताया 2012 में ऑफिशियली इसको मनाने की घोषणा की गई. भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में हाथियों को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है. भारत में हाथियों की गिनती आखिरी बार 2017 में हुई थी.
एंड ऑफकोर्स नाइम दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग अ बैलेंस एंड हेल्थ ऑफ फॉरेन ऑफकोर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ऑल्सो दीज ब्रेनी इंटेलिजेंट क्रीचर्स नीड ऑल आर अटेंशन लव सो स्प्रेड द वर्ड एंड डू द नीडफुल.
और अब यहां तक की अगर हमने बात कर ली है तो अब इतिहास की तरफ चलते हैं हम कि हमारे इतिहास में आज के दिन यानी कि 12 अगस्त को क्या क्या खास हुआ था, कब कब खास हुआ था.
1851 दिस डे आइजैक मेरिट सिंगर पेटेंटेड हिज सोइंग मशीन एंड फॉर्मड आईएम सिंगर एंड कंपनी टू मार्केट द प्रोडक्ट एंड ऑफकोर्स इट वॉज द फर्स्ट सोइंग मशीन विद ट्रेडल दैट अलाउड द यूजर टू ऑपरेट द मशीन विद हिज और हर फुट इन ऑर्डर टू टर्न द व्हील. And in 1877, another patent, another discovery, Thomas Edison completed his first model of a phonograph that recorded sounds, leading to the invention of more such devices. And another important patent in the year 1930, in a stroke of culinary innovation, Clarence Birdseye secured a patent for a revolutionary method of quick freezing food, forever altering the way we preserved and consumed edibles. And in 1898, this day, the curtain fell on the Spanish-American War with the signing of peace protocol, marking the end of a chapter and the dawn of a new geopolitical era. And also 1948, this day, India won its first Olympic medal following our independence in the men's hockey event.
और अगर इसी तारीख को यानी 12 अगस्त को आगे और लेकर चले तो 1992 में उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कनाडा और मैक्सिको में मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा संपन्न हुआ था. 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और इसराइल के बीच फाल्कन सौदे को मंजूरी दी थी. 2004 में फ्रांस के मशहूर स्ट्राइकर जिनेदिन जिदान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया और 2007 में अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान एंडेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे यात्रियों ने स्टेशन पर नई बीम लगाई थी. और अब बात उन शख्सियतों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन है.
अमेरिकन फिल्म मेकर सेसिल बी डिमिल वाज अ सिनेमा लेजेंड नोन फॉर यूजिंग स्पेक्टिकल इन मूवीज लाइक द टेन कमांडमेंट्स द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ सैमसन एंड डिलाइला क्लियोपेट्रा एटसेट्रा वाज बोर्न इन एशविल मैसाचुसेट्स दिस डे इन 1881 एंड टुडे ऑल्सो रिमेंबर एमिनेंट हिस्टोरियन के Neelakanta Shastri, born this day in 1892, regarded as the greatest prolific among professional historians of South India. And 12th August 1982, the world of stage and screen lost this gem, Henry Fonda, American actor whose performances resonated in works like Mr. Roberts, 12 Angry Men, and on Golden Pond.
और आज पुण्यतिथि है भगवत शरण उपाध्याय की, जिनका जन्म 1910 में और निधन आज ही के दिन 1982 में हुआ था. भारतविद के रूप में देशी विदेशी अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से सक्रिय रूप में संबद्ध रहे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मनीषा का प्रतिनिधित्व किया भगवत शरण उपाध्याय ने. जीवन के अंतिम समय में वो मॉरिशस में भारत के राजदूत थे. भगवत शरण उपाध्याय का व्यक्तित्व एक पुरातत्वज्ञ इतिहासवेत्ता संस्कृति मर्मज्ञ विचारक निबंधकार आलोचक और कथा के रूप में जाना जाता है. और उनकी खास बात यह है कि उन्होंने 3 खंडों में भारतीय व्यक्ति कोष तैयार करने के अलावा नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी विश्वकोश के 4 खंडों का संपादन भी किया और भगवत शरण उपाध्याय का साहित्य लेखन आलोचना से लेकर कहानी, रिपोर्टाज, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्त, बाल किशोर और प्रौढ़ साहित्य तक विस्तृत है, यानी ये फैला हुआ है।
फिजिसिस्ट एस्ट्रोनॉमर हु इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च हेल्प डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया दैट्स विक्रम साराभाई। ही टुक बर्थ दिस डे इन 1919 रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ही वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण इन 1966 एंड पद्म विभूषण पॉस्टमसली इन 1972। स्कॉटिश सिंगर गिटारिस्ट को फाउंडर ऑफ ब्रिटिश rock band Dire Straits, Mark Knopfler turned 75 years of age today. A skilled guitarist, prolific songwriter, he continues to enjoy fan following. And in 2018, Dire Straits was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame, and the same year he was recognized with a Living Legend Award from the Scottish Music Awards. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces.
और आज ही पुण्यतिथि है गुलशन कुमार दुआ की। गुलशन कुमार दुआ जो एक ऐसे इंसान रहे जिन्होंने जीरो से हीरो बनने तक के अपने संघर्ष की कहानी को असल रूप में दुनिया तक पहुंचाया। प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी थे गुलशन कुमार दुआ, जो सिर्फ गुलशन कुमार के नाम से मशहूर रहे। एक म्यूजिक कंपनी के संस्थापक रहे। उनका नाम फिल्मी दुनिया के उन हस्तियों में शुमार है जहां जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की उन बुलंदियों को हासिल कर लिया जहां पहुंचना हर किसी का ख्वाब होता है। संघर्षपूर्ण जीवन बिताने के बाद अपने संगीत और उसके प्रति लगन से उन्होंने एक खास मकाम हासिल किया। 5 मई 1956 को दिल्ली के एक परिवार में गुलशन कुमार का जन्म हुआ था और उनके जो पिता थे सुभद्रा, ये बड़ी मजेदार सी बात है हमारे सुनने वालों के लिए भी और हर इंसान के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि उनके पिता दिल्ली के दरियागंज बाजार में फलों के जूस की दुकान चलाते थे जहां गुलशन कुमार भी अपने पिता के काम में हाथ बटाते थे और वहां से उनकी जो यात्रा शुरू हुई वो एक अलग मकाम तक ही पहुंची और उन्होंने हिंदी सिनेमा की म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा, मशहूर होते चले गए। न सिर्फ खुद मशहूर हुए बल्कि उन्होंने कई गायकों के करियर को भी बनाया। सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू जैसे बाहर गायक उन्होंने लॉन्च किए और एक वक्त ऐसा आया 1997 में 12 अगस्त के ही दिन जब उनकी मुंबई में ही हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं की फिल्म, उन्हीं की कंपनी का एक गीत सुनते हैं।
Patrick Bruce Metheny is an American jazz player, jazz guitarist and composer. He's the leader of the Pat Metheny Group. He's also involved in duets, solo works, other side projects. His style incorporates elements of progressive, contemporary jazz, Latin jazz, jazz fusion. Happy birthday. And we also remember poet-writer William Blake on his anniversary today. A visionary poet, painter, printmaker, Blake produced a bold and mysterious work that have gone in to inspire countless musicians both from classical and popular music world.
और आज जयंती है रॉबिन बैनर्जी की। असम के गोलघाट के एक प्रसिद्ध वन्यजीव विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, चित्रकार, फोटोग्राफर और दस्तावेजी फिल्म निर्माता थे रॉबिन बैनर्जी। उन्होंने कुल 32 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने और सहेजने के लिए खुद को इस तरह से समर्पित कर दिया था कि अपने मेडिकल प्रोफेशन को भी बिल्कुल ही पूरी तरह से छोड़ दिया था। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति रॉबिन बैनर्जी के इसी समर्पण के लिए उन्हें 1971 में पद्मश्री से नवाजा गया। उन्हें अपने वाइल्ड एशियाई फिल्मों के लिए 14 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया था। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सबने पढ़ा और सुना है, और जिन्हें वाइल्ड लाइफ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है उन सभी का सपना यह होता है कि एक बार तो काजीरंगा जाएं, और जो भी वहां जाते हैं वो उस जंगल से यहां के जीव जंतुओं से जैसी मोहब्बत हो जाती है। कुछ ऐसे ही डॉक्टर बैनर्जी के साथ भी हुआ। और कहने को हमारे पास उनके बारे में अभी बहुत कुछ है कि पेशे से पर्यावरणविद, एक फोटोग्राफर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर वो कैसे बने, लेकिन वक्त है कि जो हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि इनके बारे में और बात की जाए। तो यहां हम अपने इस सेगमेंट को खत्म करते हुए अपने श्रोताओं से इजाजत लेने की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा,
स्टे ट्यून्ड फॉर समाचार प्रभात, हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15। थैंक्स सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।